Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahimna Stotra, presented by Swami Sri Muktanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
O Bhagwan Shiv ki aradhana kar rahe hain. Kiski aradhana kar rahe hain? भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। रामेश्वरम महादेव, वही वही राम जी कह रहे हैं, नमामि वेद त्रैलोचनम तम। वही राम कह रहे हैं, नमामि शंभुम पुरुषम पुराणम। वही राम कह रहे हैं, नमामि मूर्ति त्रय वर्जितम तम। वही भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। वे ही राम। गोस्वामी जी ने कहा, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजंभानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। जो प्रचंड है, त्रिपुर का दहन किसने किया? त्रिपुरारी कहते हैं, त्रिपुरारी। तीनों पुरों का दहन किसने किया? किसी से नहीं हो रहा था। ऐसे प्रचंड है महाराज। और प्रकृष्ट माने सर्वोत्कृष्ट, वही है। उत्कृष्ट में प्र उपसर्ग लगाया, प्रकृष्ट हो गया। प्रकृष्ट माने सबसे श्रेष्ठ, वे ही है। लगते थे वो भूतों के साथ हैं, सर्पों की माला पहन रखी है, अमंगलम अमंगलम शीलम, है ना। जो उनका देखने में तो अमंगल है, लेकिन वो मंगलप्रद हैं। अच्छा बताओ, ये भूत सृष्टि में ही तो रहते होंगे ना, या सृष्टि से बाहर रहते हैं? सृष्टि में रहते हैं। तो क्या भगवान सृष्टि छोड़ करके चले जाएं कि यहां तो भूत रहते हैं? विचार करो। कहते हैं कि शिवजी के पास भूत रहते हैं, तो भाई ऐसे भगवान का क्या करें जिसके पास भूत ना रहते हों? ये भूत है, प्रेत है, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, जो कुछ भी है, सर्प है, सांप बिच्छू है, जो कुछ भी है, ये सृष्टि का ही अंग है, अब नहीं है। और सृष्टि किसमें है? फिर कहां चले जाएंगे? क्या सृष्टि छोड़ के चले जाएं? फिर तो ये भूत प्रेत कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? अरे उनकी आराधना योगी भी करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, ध्यानी भी करते हैं, ऋषि महर्षि भी करते हैं उनकी आराधना। अरे देव गंधर्व भी उनकी आराधना करते हैं, देवता भी उनकी आराधना करते हैं, दैत्य भी उनकी आराधना करते हैं। भाई वो तो अपने अपने मन के भाव के अनुसार उनको उस प्रकार की शक्ति प्रदान कर देते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं रखते। तो जो कहते हैं कि अमंगल है महाराज, भूत प्रेत रहते हैं, तो भाई अगर आपके भगवान के पास भूत प्रेत नहीं है तो उस भगवान का हम करेंगे क्या? वो तो भूत प्रेत से डर के भग गया। अरे सृष्टि परमात्मा में है, सृष्टि परमात्मा में है, और ये भूत प्रेत भी परमात्मा में, सृष्टि में है। जब सृष्टि परमात्मा में है और सृष्टि में ये है, तो फिर परमात्मा के साथ तो ये रहेंगे, परमात्मा के साथ तो ये। इसलिए इनका ये स्वरूप देख करके मत सोचो कि ये अमंगल हैं। महाराज परम मंगल रूप यही है, परम मंगल रूप यही है। इसीलिए इनका ये सारी विचित्रताएं रहते हुए भी इसलिए भगवान है, सबको अपने साथ रखते हैं। अच्छा रूप बदलने की आवश्यकता नहीं है कि आप भाई भूत अच्छे नहीं लगते, आप जरा सुंदर होकर के आओ। नहीं, सौंदर्य तो हमारी दृष्टि का खेल है, सौंदर्य हमारी दृष्टि का खेल है और कुछ भी नहीं है। जो एस्थेटिक सेंस है वो तो व्यक्ति पर निर्भर है, सब्जेक्ट पर नहीं है, ऑब्जेक्ट पर है। किसी को गुलाब का फूल सुंदर लगता है, किसी को कमल का फूल सुंदर लगता है। हमारे उत्तर भारत में चले जाओ, अगर शिव जी का काले पत्थर से बना दोगे कितना अच्छा नहीं लगेगा। दक्षिण भारत में चले जाओ, वहां व्हाइट पत्थर का शिव जी बना दोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो देखते 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 जैसा जैसा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसा वैसा आपको लगने लग गया। सारी चीज सुंदर है परमात्मा की सृष्टि में, कोई असुंदर है ही नहीं, लेकिन हमारा भाव है। इसलिए भगवान शिव के पास जो कुछ भी है वह उसी रूप में है, जो कुछ भी है वह उसी रूप में, इसी रूप में रहो, तुम्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है। रहो भूत प्रेत के रूप में, रहो सिद्ध हो तो भी इसी रूप में रहो। तो प्रकृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट वही है, प्रगल्भम और बहुत गंभीर है, परेशम सबके स्वामी वही है, पर ईशम परेशम सबके स्वामी वही है, एकमात्र शिव। कहा ना सर्वनाथम, विशेषण दिया, सबके नाथ सबके स्वामी वही है। अखंडम अजंभानुकोटि प्रकाशम, कैसे वो अखंड हैं, खंड खंड नहीं है और आज है उनका जन्म भी। अच्छा ये तो बात है, आप तो कथाकार सुनाते हैं ना कि भगवान जब शिव का विवाह हुआ तो पुरोहित ने पूछा, भाई आपके पिताजी का क्या नाम है? तो पहले तो वो थोड़ा चुप रहे, बार बार पूछा तो बोले ब्रह्मा। उनके पिता का क्या नाम है? उन्होंने कहा विष्णु। अच्छा उनके पिता का क्या नाम है? बोले वो तो मैं ही हूं। आप राम जी के बाल लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, कहीं शिव जी की बाल लीला हुई है? क्योंकि जन्म ही नहीं तो बाल लीला कहां से है। अवतार तो हैं उनके, अवतार तो बहुत हैं, लेकिन उनकी बाल लीलाओं का वर्णन जन्म ही नहीं, अनादि है वो, वे अनादि हैं, उनका जन्म का वर्णन है ही नहीं। शिव जी के माता पिता का क्या नाम? देखो राम जी के माता पिता का नाम और कृष्ण जी के माता पिता का नाम, दो मार दो बाप है नहीं, एक जन्म देने वाले और एक लालन पालन करने वाले। लेकिन शिव जी के माता पिता का नाम क्या है? अलक्ष जन्मना, उनका कुल उनका पता नहीं। कौन सा कुल है शिव जी का? रामचंद्र जी कहते मैं सूर्यवंशी हूं, कृष्ण जी कहते मैं चंद्रवंशी हूं, लेकिन शिव जी क्या कहते हैं? भई ये सूर्य चंद्र मेरे ही हैं, सूर्य और चंद्र तुमर्कस्त्वम सोमा तुमसि पवनस्त्वम हुतवः तमापस्त्वम व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च। हे प्रभु तुम ही सूर्य हो और तुम ही चंद्रमा हो। एक कहते मैं सूर्यवंशी हूं, एक कहते मैं चंद्रवंशी हूं, भगवान शिव कहते हैं ये मेरे ही हैं, सूर्य भी मेरे में है और चंद्रमा भी। अरे मेरा ही एक रूप है सूर्य, मेरा एक रूप है चंद्रमा, मेरा एक रूप है जल, मेरा एक रूप है पवन, मेरा एक रूप है अग्नि, मेरा एक रूप है पृथ्वी, मेरा एक रूप है यजमान जीवात्मा, मेरा एक रूप है आकाश, ये मेरे ही रूप है। तुम अर्कस तुम सोमा, सोम माने चंद्रमा, अर्क माने सूर्य, तुम अर्कस तुम सोम त्वमसि पवनस त्वम भूतवः, आप ही वायु हैं, आप ही अग्नि हैं, तुम आप ही जल हैं महाराज, त्वम व्योम है, आप ही आकाश हैं, त्वम धरणी आप ही धरती हैं, त्वम आत्मा और यजमान जीवात्मा भी तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। अष्टमूर्ति तो भगवान शिव जी का कौन सा वंश है? इसलिए कहा अखंडम अजम, वो अज है, आज उनका जन्म नहीं हुआ, उनकी बाल लीलाएं आपको नहीं मिलेंगी। तो फिर ये बाल लीलाएं नहीं हुई थी, महाराज सती के साथ विवाह हुआ, पार्वती के साथ विवाह हुआ, तो बड़े से तो छोटे हुए होंगे, तभी ना विवाह के योग्य हुए होंगे। आप पढ़ते ना रामचंद्र जी, अब देखा कि दशरथ जी ने कि अब ये विवाह के योग्य हो गए, तो दशरथ जी को चिंता हुई। दशरथ जी ने अपनी बात छिपाई नहीं, अपने मंत्रियों को, अपने पुरोहितों को, वशिष्ठ वामदेव को सामने प्रकट कर दी। जब विवाह की चिंता हुई थी वशिष्ठ जी को, दशरथ जी को, तो विश्वामित्र जी आगे लेने के लिए। ऐसी श्री कृष्ण का सबको समय समय पर माँ बाप को चिंता हुई कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया, अब विवाह करना है, लेकिन शिव जी के माँ बाप ही नहीं तो चिंता कौन करेगी, अब विवाह कौन करेगा? नहीं, अरे तो आज है अनादि है, ये तो उसी रूप में प्रकट होते हैं, इनके अंदर न जवानी है न बुढ़ापा है। अच्छा एक रस है शिव जी, आपने बूढ़ा होते शिव जी को देखा? किसी ने कहा कि अब शिव जी बूढ़े हो गए? किसी ने कहा? रामचंद्र जी ने कहा कि भाई अब राज जिनको दे देते हैं, लव और कुश है उनको, चलो अब हम वन में चलते हैं। किसी ने कहा शिव जी ना तो बालक हुए, शिव जी ना तो बूढ़े हुए, शिव जी क्या है? और ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, तुम सदा जवान हो, युवानम अजरम अमरम, युवान है आप, सदा युवा है। ये आत्मा के लिए आया है, ये किसके लिए आया है ऋग्वेद में? आत्मा के लिए आया है। अच्छा आत्मा बूढ़ा है या जवान? अरे सदा एक रस है, ऐसे ही शिव जी भी सदा एक रस है। वो उन्होंने कहा कि चलो लीला करें, करो लीला करो, तो जवान ही आ गए, न बच्चे हुए बूढ़े भी नहीं हुए। आप देखिए जब सती चली गई तो ध्यान में तो चले गए, कहां गए? अपने स्वरूप में, ध्यान में तो चले गए, लेकिन सती की चिंता में बूढ़े नहीं हुए, ध्यान में चले गए। तो एक रस है भगवान शिव, इसलिए उनको है अज। उनका जन्म नहीं है, कहीं माता पिता का नाम आप नहीं देखोगे। हाँ एक माता है, दक्षिण भारत की एक भक्त थी, वो भगवान शिव को अपना बेटा मानती थी। क्या मानती थी? अपना बेटा मानती थी। और जब अपना बेटा मानती थी तो महाराज रोज शिव जी की आराधना करने जाती थी, अस्वस्थ हो गई नहीं गई। तो भगवान शिव को दो दिन हो गए, तीसरे दिन पुजारी को कहते हैं मेरी मां नहीं आई, लेकर के आओ। क्या बोले? लेके आओ, मेरी मां नहीं आई। एक मां तो है उनकी, एक और देवी हुई, लल्लेश्वरी देवी, लल्लेश्वरी देवी कश्मीर में हुई। और शंकराचार्य पद के ऊपर जो उस समय आचार्य बैठे हुए थे, उन्होंने दीक्षा दी उनको, जबकि उस समय स्त्री को दीक्षा देना बहुत मुश्किल था। भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, बड़ी भारी भक्त थी शिव जी की। महाराज वो भी शिव जी को इसी रूप में मानती थी। तो आप भक्त जिस भाव से मान लो तब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने किसी के यहां जन्म लिया नहीं। अजम तो अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, अज है वो। कहीं उनके जन्म का वर्णन नहीं मिलता, कहीं उनके बालकपन का वर्णन नहीं मिलता, कहीं उनकी बाल लीलाओं का वर्णन नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। बाल है ही नहीं वो, वो तो सदा युवा हैं, सदा ज्ञान स्वरूप हैं, सदा एक रस हैं, अखंड हैं, अनादि हैं। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणिम, और महाराज कैसे त्रिशूल है ना उनके हाथ में, क्या है ये त्रिशूल? क्या है शूल? कहते हैं दर्द को, पीड़ा को, दुख को, है ना? और तीन प्रकार के शूल है हमारे पास, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। आधिदैविक आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के शूल हैं। ऐसा समझ लो, एक तो हमारा बाहर का दर्द है, पशु पक्षी टक्कर मार गए, रास्ते में खड़े थे, किसी मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, ये तो हो गया आदि भौतिक। और ज्यादा वर्षा हो गई, कम वर्षा हुई, नहीं हुई, अकाल पड़ गया, ये हो गया आदिदैविक। और हमारे मन में चिंता भय हुई, क्योंकि आजकल डिप्रेशन होता ना, ये जो डिप्रेशन है ना, ये आध्यात्मिक शूल है। ये जो डिप्रेशन है, ये आध्यात्मिक शूल है। जो डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, मन का अवसाद है, ये सारा का सारा आध्यात्मिक शूल है। और इन तीनों प्रकार के शूल को निर्मूल करने वाले भगवान शिव हैं। त्रय शूल निर्मूलनम शूल पाणिम। महाराज, उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है। अरे, आपके आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुख दूर करेंगे। आपकी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का विध्वंस करके तुरीय में विलीन हो जाएंगे। यही त्रिशूल है। भगवान के त्रिशूल का रहस्य है कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। ऐसे जो भवानी पति हैं, उनको मैं भाव से भजन करता हूं, भाव से। और भाव से अगर भजन नहीं करोगे तो भक्ति आएगी नहीं। महाराज, भाव से ही भजन करना है। भजन करो तो भाव से ही करो। तो ऐसे जो शिव का बड़ा विचित्र रूप बताया है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलातीत, भगवान में कितनी कलाएं हैं, उपनिषद में आता है ना, प्रश्न उपनिषद में है, षोडश कलावंतम भरद्वाज त्वं वेत्थ ना हम वेद्मी, उपकोशल नरेश भरद्वाज के यहां पहुंच गए और जाकर के कहने लगे पिपलाद ऋषि से, मैं एक बार भरद्वाज ऋषि के यहां गया था, मेरे से किसी ने पूछा क्या तुम 16 कला वाले पुरुष को जानते हो, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जानता, तो मैं भरद्वाज के पास चला गया। भरद्वाज ऋषि से पूछा क्या तुम 16 कला वाले पुरुष को जानते हो, तो भरद्वाज ऋषि ने कहा मैं भी नहीं जानता। समूलो है वायश परिशुष्यति ये अनृतम वदति यो ही अनृतम वदति, जो झूठ बोलता उसका सर्वनाश हो जाता है, ये वहीं लिखा है उपनिषद में। इसलिए मैं नहीं जानता, तो पिपलाद ऋषि से कहते हैं कि बस उसी 16 कला वाले पुरुष को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। करवा 16 कलाएं बताई, लेकिन देखो जो 16 कलाएं हैं ना, जितनी भी 16 कलाएं हैं, जिसके पास वो 16 कलाएं हैं वो खुद कला रहित है। ये कलाएं जितनी भी ये बाहर की हैं, श्रद्धा है, प्राण है, अन्न है, जो कुछ है, 16 बताई हुए, वो जिसकी हैं, वो तो ऐसा है जैसे उसने किसी की चद्दर लेकर के सो गया, वो चद्दर उसकी अपनी नहीं है। ऐसी ये कलाएं एडोप्टेड है माया से, लेकिन ये कलाएं जितनी एडोप्टेड है माया से, जितनी भी ली गई हैं, ये वो कला रहित है, वो निष्कल है, वह ज्यों का त्यों है, वह ज्यों का त्यों है। बाकी आप माने कर्म, श्रद्धा, ये जितनी 16 कलाएं हैं, सारी की सारी कला जिसके पास है, उसमें न घटना है न बढ़ना है, लेकिन कलाओं के घटने बढ़ने के कारण हम उसको घटता बढ़ता मानते हैं, उसको जन्म मरण मानते हैं, उसको कर्म कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, लेकिन स्वयं में वो कलातीत है। देखो कितनी गजब की बात उपनिषद ने कही है। तो सोलह कला वाला पुरुष ही है, जीव है। सोलह कला वाला पुरुष कौन है? चिदाभास वेदांत की भाषा में, पर समझने के लिए समझ लो जीव है। ये जीव जो है ये सोलह कला वाला है महाराज, लेकिन जो बिंब है जिसका प्रतिबिंब अंतःकरण पर पड़ रहा है, वह जो बिंब है उसमें कोई कला नहीं है। वह न घटता है न बढ़ता है, न जन्म लेता है न मरता है, न कर्म करता है न भोगता है। इसलिए कलातीत, सभी कलाओं से परे है, सभी कलाओं से परे है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। तो महाराज कलातीत है तो बैठा बैठा देखता रहता होगा? नहीं नहीं, अरे जिन कलाओं को लेकर के आप लोग कर्म करते हो, उन कर्मों के परिणाम के अनुसार जब आपको दुख मिलता है और दुख में जब आप उस कलातीत को पुकारते हो तो वे आपका कल्याण करते हैं, है ना? जिन कलाओं को प्राप्त करके हम ये नाना प्रकार की सृष्टि, अपनी मानसिक सृष्टि बना रखी है, मैं और मेरा करके इसमें फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार की विधाओं को हम करते जा रहे हैं, तो अनेक प्रकार के कर्मों का संपादन होने से, अनेक प्रकार के मैं और मेरे में फंसने के कारण हमें थोड़ा सुख मिलता है, नहीं तो दुख ही दुख मिलता है। और उस दुख में जब हम उसे पुकारते हैं तो वह हमारा कल्याण करता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। अगर आप नहीं पुकारोगे, कर्म करते 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 जन्म लेते 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 थक जाओगे, तो एक दिन वो आपको थोड़ा विश्राम भी दिला देंगे। तो उसको क्या कहा? कल्पांतकारी, कल्प के अंत करने वाले, प्रलय करने वाले हैं। ओहो शंकर, तू शंकर है तो फिर इतना क्यों प्रलय भयंकर है? शंकर, तू शंकर है तो फिर क्यों प्रलय भयंकर है? अगर शंकर माने कल्याण करने वाला, अगर शंकर तो कल्याण ही करता है तो प्रलय क्यों करता है? ये क्या कल्याण है? नहीं, लेकिन वो भी एक कल्याण ही है, वो भी एक कल्याण ही है। तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। आहा, बड़ा सुंदर कहा है। ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, श्लोक पूरा करेंगे क्योंकि घड़ी पर मेरी नजर है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। और सज्जनों को आनंद देने वाले हैं क्योंकि आनंद स्वरूप है। क्या है वे? आहा, नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, और नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण वही करते हैं, आनंद वही देते हैं, सुख की राशि वही है, आनंद की राशि वही है। तो सज्जनों को सदा आनंद देते हैं महाराज। बहुत इतिहास है सज्जनों को आनंद दिया। ये तो ऐसे देवता है चलते चलते आनंद दे देते हैं, चलते चलते जा रहे हैं, देखा है कि कोई व्यक्ति कष्ट पा रहा है, अच्छा दुख पा रहा है, चलो इसको आनंद दे दो, चलते हुए आनंद दे देते हैं। इनको अपने पास तो कुछ रखना है नहीं, बांटना ही है, बांटते रहते हैं। तो सज्जनों को आनंद देने वाले हैं, दुर्जनों को आनंद तो दुर्जनों को भी देते हैं क्योंकि उनके यहां दुख है ही नहीं, है ना? दुख नहीं है ना उनके यहां, बस त्रिशूल हाथ में ले रखा है, वो त्रिशूल छोड़ देते हैं। जो सज्जन है उनको लगता है तो उनके तीनों शूल खत्म हो जाते हैं। जो सज्जन है उनका वो त्रिशूल लग जाए तो उनके तीनों शूल समाप्त हो जाते हैं। जो दुर्जन है उनको शूल लग जाता है तो तीनों शूल चालू हो जाते हैं। ये त्रिशूल का यही काम है, ये शिक्षा देने के लिए कि अच्छा कर्म कर लो। तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। पुरारी की थोड़ी लंबी कथा इसलिए हम उसको छेड़ेंगे नहीं। त्रिपुर का दहन करने वाले हा? चिदानंद संदोह मोह अपहारी। और आप चिदानंद संदोह माने चिदघन है, चैतन्य स्वरूप है आप महाराज शिवजी। आप चैतन्य स्वरूप है और मोह को हरण करने वाले हैं, क्योंकि आप में खुद में मोह नहीं है। देखो एक और बात है, विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन हुआ तो लक्ष्मी निकली तो किसने ली? विष्णु ने ली ना। श्री कृष्ण को मैया कहती थी बेटा दूध पी लो फिर तेरी बहुत सुंदर बहू लेके आऊंगी, है ना, ठीक है ना। लेकिन जब इनके पास देवता गए आपको विवाह करना तो समाधि में बैठ गए। कहां बैठ गए? समाधि में बैठ गए। तो मोह था क्या इनको? इनको खुद को मोह नहीं था। महाराज विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान कहने लगे कि आपके विवाह से ही कल्याण होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो फिर कहा ठीक है मैं कर लूंगा विवाह। तो फिर क्या ये राजी हुए? फिर समाधि में बैठ गए। बड़ी प्रार्थना की महाराज, बड़ी प्रार्थना की। और देवताओं ने ही नहीं की, जो विवाह करना चाहती उसने भी तपस्या की, उसने भी तपस्या की। आपको ब्रह्मा और विष्णु के बारे में ऐसा मिलता है कि लक्ष्मी ने तपस्या की हो विवाह के लिए, सरस्वती ने की हो? मिलता है कहीं? अच्छा एक और बात है, टाइम तो होगा पर एक और बात हम आपको बताएं। आप देखिए कहीं नहीं पढ़ोगे कहीं पर भी कि सती ने या पार्वती ने शिव जी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी से प्रार्थना की हो, कहीं नहीं पढ़ोगे। पढ़ो कहीं? अच्छा अब आप ईमानदारी से बताओ, रुक्मणी ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए किससे प्रार्थना की है? अच्छा सीता जी ने किससे प्रार्थना की? पार्वती से की, भवानी से की, बात एक ही है, दुर्गा से की है? रुक्मणी ने दुर्गा जी से कहा हे मां जैसे आप शंकर प्रिय हैं ऐसे मुझे भी बना दो, मैं भी श्री कृष्ण प्रिय हो जाऊं। सीता जी ने कहा, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि किसी को? उनको मालूम था कि जब तक मैं स्वयं तप नहीं करूंगी तब तक ये मिलने वाले नहीं है। तो चिदानंद संदोह मोह अपहारी। तो भाई मोह को अपहरण करने वाले हैं, मोह को अपहरण करने वाले हैं। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अच्छा ये तो हो गया, अब कल और थोड़ा सा शिवजी के बारे में चर्चा करेंगे, अभी तो आपके दो मिनट ज्यादा ले ली है हाँ? कल शिवजी के बारे में और चर्चा करेंगे, परसों फिर भगवद गीता सुनाएंगे हाँ? ठीक है ना, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।